देखिए भाई आगे सबक। वल कलिमु बिकसरी लामी जिनसुन ला जमउन कतमरिम व तमरतिन बिदलील कौलिही तआला इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिबु वकील जमउन हैसु ला यकउ इल्ला अला सलासि फसाइदन वल कलिमु तय्यिबु मुअव्वलुन बिबाज़िल कलिमि वल्लामु फीहा लिल जिनसि वत्ताउ लिल वहदति। गुज़श्ता सबक में खुतबे के बाद शरह जामी का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था। हासिल कलाम ये कि शुरू में शारह जामी ने आपको बतलाया कि अल्लामा इब्ने हाजिब ने अपनी किताब काफिया में बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया, कसरे नफसी से काम लेते हुए, यानी आजिजी से काम लेते हुए, क्योंकि उन पर एतराज होता है कि हमारे तमाम सलफ सालहीन ने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र किया है अपनी किताबों में, तो ऐ साहिब काफिया आपने बुजुर्गों के तरीके की पैरवी क्यों नहीं की। तो उसका जवाब दिया साहिब जामी ने कि साहिब काफिया ने कसरे नफसी से काम लेते हुए अपनी किताब के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया कि मेरी यह किताब आम सी मामूली सी मेरी किताब है, यह बुजुर्गों की किताबों की तरह नहीं कि मैं उनके तरीके पर इसको शुरू करता। फिर इस पर इश्काल हुआ कि फिर तो हदीस की मुखालिफत लाजिम आई, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लु अमरिन ज़ीबानिन लम युब्दा फीहि बिहम्दिल्लाहि फहुवा अबतर, कि हर जुशान काम जिसको अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू न किया जाए वो नाकिस होता है, अधूरा होता है, बेबरकत होता है। तो उसका जवाब भी मुल्ला जामी ने दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज न बनाने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया होगा। हदीस के अंदर मुतलकन शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह लाने का जिक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाने की दो सूरतें हैं, एक ये कि जुबान से जिक्र किया जाए और एक सूरत यह कि किताबत की जाए, उसको बाकायदा लिखा जाए। तो साहिब काफिया ने बेशक इस अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज नहीं बनाया, लेकिन इसका यह मानना नहीं कि वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह लाए ही नहीं और यह किताब बेबरकत है, बल्कि उन्होंने जुबान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह को अदा कर दिया होगा। भाई तो जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली जाए तो हदीस पर अमल हो जाता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा एतराज यह हुआ कि इल्म नहु का मौजू कलिमा और कलाम है, लिहाजा साहिब काफिया को कलिमा और कलाम के अहवाल से बहस शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने शुरू में कलिमा की तारीफ जिक्र कर दी। तो उसका जवाब भी दिया कि भाई किसी चीज को जब जाना जाएगा उसके बाद ही उसके अहवाल से बहस की जाएगी, जब तक तालिब इलम को कलिमा और कलाम का पता नहीं होगा तो वो उनके अहवाल से कैसे बहस कर सकेगा। तो चुनांचे इसीलिए फिर वो शुरू में कलिमा की तारीफ लेकर आए और आगे चलकर फिर उन्होंने कलाम की भी तारीफ जिक्र की। फिर इश्काल हुआ कि कलिमा और कलाम में से कलाम वो मुफीद है, वो फायदा देता है, उसमें बात पूरी समझ में आ जाती है। मसलन मैंने कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, देखो एक पूरी बात आपको पता चल गई। तो कलाम मुफीद है और कलिमा गैर मुफीद है, उससे बात का पूरा पता नहीं चलता। तो लिहाजा जो मुफीद है यानी कलाम उसको मुकदम करना चाहिए था, और जो गैर मुफीद है यानी कलिमा उसको मुअख्खर करना चाहिए था। फिर मुसन्निफ ने कलिमा की तारीफ क्यों मुकदम की कलाम की तारीफ पर? तो उसका भी जवाब दिया कि भाई ये जो कलिमा है ये जुज है कलाम का, कलिमा जुज है कलाम का, और कलिमे का जो मफहूम है वो जुज है कलाम के मफहूम का, और जुज मुकद्दम होता है कुल पर। जैसे मैंने मिसाल देकर समझाया था कि एक है गाड़ी और एक है गाड़ी के तमाम अज्जा, गाड़ी के तमाम अज्जा, तो पहले गाड़ी के अज्जा बनते हैं उसके बाद उनको जोड़कर गाड़ी बनाई जाती है। तो जुज क्या होता है? कुल पर मुकद्दम होता है। इसीलिए साहिब काफिया ने भी कलिमा को जो कि जुज था कलाम का उसको मुकद्दम किया। उसके बाद मतन शुरू हुआ था काफिया का और पहला लफ्ज अल कलिमा आया, तो मुल्ला जामी ने कलिमा की तहकीक शुरू की और आपको बतलाया कि कलिमा और कलाम ये दोनों मुश्तक हैं कलमुन से। ये दोनों क्या हैं? मुश्तक हैं कलमुन से। याद रखो एक होता है मुश्तक और एक होता है मुश्तक मिनहु। जिससे इश्तिकाक किया जाए उसको कहते हैं मुश्तक मिनहु। देखो तर्जमे से बात समझ में आ रही है, मुश्तक मिनहु यानी मुश्तक मिनहु, इससे इश्तिकाक किया गया है। और जिसका इश्तिकाक किया जाए उसको मुश्तक कहते हैं। जैसे जारबुन ये मस्तर है और इसी से जाराबा बना, यजरिबू बना, जारिबुन बना, तो जारबुन को क्या कहेंगे? मुश्तक मिनहू, और जाराबा, यजरिबू और जारिबुन को मुश्तक कहेंगे। तो शारह जामी ने आपको बतलाया कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो कलिमा और कलाम हैं ये मुश्तक हैं कलमुन से। इस पर इश्काल हुआ कि मुश्तक और मुश्तक मिनहू के अंदर लफ्जों में भी मुनासिबत जरूरी और माना के अंदर भी मुनासिबत जरूरी है। लफ्जों के अंदर तो मुनासिबत हमें नजर आ रही है कि कलमुन के हुरूफ असलिया क्या? काफ लाम मीम। इसी तरह कलिमा और कलाम के हुरूफ असलिया भी क्या है? काफ लाम मीम। लेकिन माना के अंदर भी मुश्तक और मुश्तक मिनहू के अंदर मुनासिबत होती है जो यहां दिखाई नहीं दे रही, जो यहां मालूम नहीं हो रही। तो इन्होंने आपको बतलाया कि इन दोनों के माना के अंदर भी मुनासिबत है दलालत इल्तिजामी के एतबार से। किस एतबार से? दलालत। मैंने आपको बतलाया कि दलालत की तीन किस्में हैं, दलालत मुताबिकी, दलालत तजमुनी और दलालत इल्तिजामी। दलालत मुताबिकी यह है कि लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे। यह क्या है? दलालत मुताबिकी। जैसे इंसान का लफ्ज हैवान नातिक के लिए वजह है तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर, यह क्या है? दलालत मुताबिकी। और इसमें से अगर लफ्ज इंसान बोला जाए और सिर्फ हैवान या नातिक का इरादा किया जाए, इंसान का मफहूम क्या? हैवान नातिक। तो इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या इंसान की दलालत सिर्फ नातिक पर यानी जुज पर, यह क्या कहलाती है? दलालत तजमुनी कहलाती है। तवज्जो है, दलालत तजमुनी कहलाती है। और लफ्ज की दलालत माने मौजू लहू के लाजिम पर यानी उसके खारिज पर, यह दलालत इल्तिजामी कहलाती है। जैसे इंसान के साथ काबिलियत इलम लाजिम है यानी इंसान में अल्लाह ने इलम हासिल करने की सलाहियत रखी है, तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर, यह क्या है? दलालत मुताबिकी। इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक पर यानी माने मौजू लहू के जुज पर, यह क्या है? दलालत तजमुनी। और इंसान की दलालत माने मौजू लहू के लाजिम और उसके खारिज पर जो दलालत है वह दलालत इल्तिजामी कहलाती है। तो यहां पर मुश्तक और मुश्तक मिनहू के दरमियान दलालत मुताबिकी और तजमुनी के एतबार से तो मुनासिबत नहीं, लेकिन दलालत इल्तिजामी के एतबार से मुनासिबत है। इसलिए क्योंकि कलम उनका क्या माना? जख्मी करना, और जख्मी करने के साथ तासीर लाजिम है। क्या लाजिम है? तासीर यानी असर डालना। देखो किसी को जख्मी करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, तो देखा यह है कलम उनकी तासीर भाई, जिसम पर क्या असर पड़ा? तकलीफ हुई, तकलीफ हुई। और इसी तरह कलिमा और कलाम की भी तासीर होती है, वो दिलों पर असर डालते हैं। किसी से अच्छा कलाम करें तो वो खुश होता है, और किसी से बुरा कलाम करें, बुरा भला कहें तो वो गमजदा होता है, उसे दुख होता है, तकलीफ होती है। तो जैसे कलम यानी जख्मी करने के अंदर तासीर है, इसी तरह कलिमा और कलाम के माना के साथ भी क्या लाजिम है? तासीर। जख्मी करने के साथ भी तासीर लाजिम, और कलिमा और कलाम के साथ भी तासीर लाजिम है। और फिर इस पर शेर भी जिक्र किया था, वो शेर जिसके बारे में बाग उलमा फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का शेर है जिसमें कलाम के बाज तासीरात को जख्म के साथ ताबीर किया गया था कि जिराहात उस्सिनानी लहलती आमू, कि नेजों के जो जख्म हैं वो तो भर जाते हैं, वला यल्तामु मा जरहल लिसानू, लेकिन जुबान के जख्म नहीं भरते। नेजों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जुबान के जख्म नहीं भरते। देखा यहां जुबान के जख्म कहा, यह मालूम हुआ वो जो कलिमा और कलाम है उसकी तासीर को किसके साथ ताबीर किया? जख्म के साथ ताबीर किया, कि बास कलाम इतनी तकलीफ वाले होते हैं जो इसी तरह तकलीफ देते हैं जैसे जख्म होता है, बल्कि जख्म से बढ़कर होती है इनकी तकलीफ। जख्म तो किसी न किसी वक्त जिस्म पर भर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल पर जो जख्म लगता है वो कभी नहीं भरता भाई। उसके बाद फिर मैंने आपको बतलाया कि यहां जो इश्तिकाक जिक्र हुआ उससे इश्तिकाक इस्तिलाही मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि इश्तिकाक इस्तिलाही जो है वो तीन किस्म पर है। एक को इश्तिकाक सगीर कहते हैं, और एक को कबीर, और एक को अकबर। इश्तिकाक सगीर, इश्तिकाक कबीर और इश्तिकाक अकबर। इश्तिकाक सगीर को इश्तिकाक सर्फी भी कहते हैं, जो आप सर्फ में पढ़ चुके हैं। इश्तिकाक सगीर यह है कि दो लफ्जों में माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो, और लफ्जों में किस तरह मुनासिबत हो कि दोनों के हरूफ असलिया भी एक जैसे हों और उनकी तरतीब भी एक जैसी हो, या यूं कहें दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। जैसे जरबुन से जाराबा, यजरीबू और जारिबुन मुश्तक हैं भाई। जरबुन में भी पिटाई करने वाला माना और जाराबा यजरीबू जारिबुन के अंदर भी पिटाई करने वाला माना है। जरबुन के अंदर हरूफ असलिया ज़ादराबा हैं, और इसी तरह जाराबा यजरीबू और जारिबुन में भी हरूफ असलिया ज़ादराबा हैं। और नीज जरबुन के अंदर हरूफ असलिया की तरतीब भी वही है जो जाराबा यजरीबू और जारिबुन में है, कि पहले ज़ाद है, फिर रा है और फिर बा है। तो यह है इश्तिकाक सगीर, कि दो लफ्जों के अंदर माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों के अंदर भी मुनासिबत हो, कि दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। जबकि एक है इश्तिकाक कबीर। इश्तिकाक कबीर यह है कि दो लफ्जों के अंदर माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो, लफ्जों में किस तरह मुनासिबत हो कि हरूफ असलिया के अंदर इत्तेफाक हो, हां उसकी तरतीब में इत्तेफाक ना हो। जैसे जजाबा और जबाजा, जजाबा का माना भी खींचना और जबाजा का माना भी खींचना, और जजाबा के हरूफ असलिया क्या, जीम दाल और बा, और जबाजा के हरूफ असलिया भी क्या, जीम बा और दाल। तो हरूफ असलिया में तो इत्तेफाक है, अलबत्ता इनकी तरतीब में इत्तेफाक नहीं है। जजाबा में जीम के बाद दाल है जबकि जबाजा में जीम के बाद बा है भाई। तो ये क्या है, इश्तिकाक कबीर। और एक है इश्तिकाक अकबर भाई। इश्तिकाक अकबर यह है कि दो लफ्जों में माना के एतबार से भी मुनासिबत हो और लफ्जों के एतबार से भी मुनासिबत हो। लफ्जों के एतबार से मुनासिबत यह हो कि दोनों के कुछ हरूफ असलिया में इत्तेफाक हो, दोनों के बाज़ हरूफ असलिया में इत्तेफाक हो। जैसे फसलुन और फसमुन, फसलुन फा स्वाद लाम और फसमुन फा स्वाद मीम। तो फसलुन का माना भी जुदा करना और फसमुन का माना भी जुदा करना, तो देखो माना में मुनासिबत है और बाज़ हरूफ असलिया के अंदर भी इत्तेफाक है। फसलुन में फा स्वाद है, इसी तरह फसमुन में भी फा और स्वाद है, अगरचे लाम और मीम जो है वो अलग अलग हैं दोनों में। तो यह है इश्तिकाक अकबर भाई। तो ये इन तीनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि चाहे इश्तिकाक सगीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे अकबर हो, वहां जो मुनासिबत होती है वो माने हकीकी के एतबार से होती है। किस एतबार से, माने हकीकी के एतबार से। तो ये इसमें माने हकीकी के अंदर जो है मुनासिबत, मुश्तक और मुश्तक मिनहू में माने हकीकी के अंदर मुनासिबत जरूरी है, जबकि यहां पर कलमुन और कलिमा और कलाम इनमें जो मुनासिबत है वो माने हकीकी नहीं बल्कि माने मजाजी के एतबार से है। क्योंकि कलमुन का माना जख्मी करना, माने हकीकी तो है जख्मी करना, और इसके साथ लाजिम क्या है, असर डालना। इसी तरह कलिमा और कलाम के साथ भी लाजिम क्या है, असर डालना। तो ये मुनासिबत किस माने में आई, माने हकीकी में आई या माने मजाजी में आई, माने मजाजी के एतबार से मुनासिबत आ रही है, यानी दलालत इल्तिजामी के एतबार से, माने हकीकी के एतबार से दोनों के माने में मुनासिबत नहीं है भाई। यानी यूं कहें आसान लफ्जों में, यहां सिर्फ मुनासिबत बयान की जा रही है भाई, और इस मुनासिबत को बाज़ उलमा ने इश्तिकाक के लफ्ज के साथ जिक्र फरमाया और बड़ी खूबसूरत मुनासिबत जिक्र की, लेकिन बहरहाल ये इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं। चुनांचे बाज़ उलमा ने इसको फिर इश्तिकाक बईद का नाम दिया, कि इश्तिकाक तो है लेकिन बड़ा बईद इश्तिकाक है भाई, इश्तिकाक बईद। तो यहां नफ्स से मुनासिबत जिक्र करना मकसूद था, और चूंकि ये इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं है, इश्तिकाक तो कहा लेकिन इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं है, इसीलिए साहिब जामी ने आगे देखो मतन में क्या कहा, अलकलिमतु कीला हिया वल कलामु मुश्तकानी, कीला के साथ जिक्र किया। मैंने बताया कीला सीगा तमरीज है, तमरीज मरज से है, मीम रा ज़ाद, और तमरीज का माना क्या है, कमजोर कलाम जिक्र करना, तो यह सीगा तमरीज है जिसके जरिए कमजोर कलाम को जिक्र किया जाता है। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं वल कलिमु बि कसरिल लामी जिन सुन ला जमउन कतमरिं व तमरतिन बि दलील कौलिही तआला इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब। भाई गुज़श्ता सबक में मतन के अंदर अल कलीमा आया था भाई, तो मुल्ला जामी ने कलीमा की तफसील और उसकी तहकीक शुरू की। सबसे पहले आपको बतलाया कि कलीमा और कलाम ये मुश्तक हैं कलमुन से। अब आगे मजीद तफसील बयान करने लगे हैं अल कलीमा की। भाई देखो अल कलीमा में तीन चीजें हैं, एक है शुरू में अलिफ्लाम और एक दरमियान में कलीमुन है और एक आखिर में गोलता है, ताए मरबूता। भाई ताए मरबूता तो तीन चीजें हैं। अब उनमें से हर एक की तफसील बयान करेंगे, तो होना तो यह चाहिए था अलिफ्लाम पहले है, पहले अलिफ्लाम की तफसील बयान करते कि यह कौन सा अलिफ्लाम है, उसके बाद कलीमुन की तफसील बयान करते वो दरमियान में है और सबसे आखिर में ताए मरबूता है गोलता, तो उसको बयान करते। लेकिन शारह जामी सबसे पहले कलीमुन को जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर वो अलिफ्लाम के बारे में बतलाएंगे और सबसे आखिर में ता के बारे में बतलाएंगे। तो सवाल पैदा होता है कि मुल्ला जामी ने अलिफ्लाम के बजाय कलीमुन को पहले क्यों जिक्र किया। तो याद रखना कलीमुन यह है मारूज और अलिफ्लाम और ता इसको आरिज हुए हैं। यूं आसान समझो, जैसे एक होता है मौसूफ और एक होती है उसकी सिफत। मौसूफ है तो सिफत है, मौसूफ नहीं तो सिफत भी नहीं। जैद है तो जैद की शुजाअत भी है, जैद नहीं तो जैद की शुजाअत भी नहीं है। या एक कपड़ा है तो उस कपड़े का सफेद रंग भी है, अगर वो कपड़ा नहीं तो उसका वो सफेद रंग भी नहीं है। तो मौसूफ मुकद्दम होता है सिफत पर। तो यहां पर भी कलीम जो है वो है मारूज, मारूज और अलिफ्लाम और ता है आरिस। आरिस का माना पेश आने वाली चीज। कलीमुन लफ्ज था, इसी के शुरू में क्या आ गया अलिफ्लाम और आखिर में क्या आ गई ता। तो गोया असल क्या है यहां पर कलीमुन, वो किसके दर्जे में मौसूफ, और अलिफ्लाम और ता गोया किसके दर्जे में सिफत। तो लिहाजा कौन मुकद्दम होता है मौसूफ। तो यहां पर ये कलीम जो है वो है मारूज और अलिफ्लाम और ता उसको आरिज हुए हैं और मारूज मुकद्दम होता है आरिज पर, इसलिए पहले कलीमुन के बारे में बतलाएंगे उसके बाद अलिफ्लाम और ता के बारे में बतलाएंगे। कलीमुन के बारे में तफसील याद रखें भाई, याद रखिए एक है इसमें जिन्स और एक है जमा, एक है इसमें जिन्स और एक है जमा। जमा देखो मेरे सामने एक किताब मौजूद हो तो मैं आपसे क्या कहूंगा ये किताब है, एक किताब हो तो मैं क्या कहूंगा ये किताब है। लेकिन अगर मेरे सामने तीन चार किताबें मौजूद हों तो मैं क्या कहूंगा ये किताब है या ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। देखा मैं जमा का लफ्ज लेकर आऊंगा तो एक के लिए मैं लफ्ज कहूंगा किताब और जमा के लिए क्या कहूंगा किताबें कहूंगा। तो मुफरत के लिए किताब और जमा के लिए किताबें। तो मुफरत जो है उसका इतलाक होता है एक पर, और अरबी में तस्निया भी है और जमा भी है, और जमा का इतलाक कम से कम कितने पर होता है तीन या तीन से ज्यादा पर उसका इतलाक होता है। तो एक पर जमा का इतलाक नहीं होता, यानी यूं कहें दो से कम पर जमा का इतलाक नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ एक है इसमें जिन्स। भाई याद रखिए इसमें जिन्स वो है जिसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है, एक हो तो भी वो जिन्स, दो या ज्यादा हो तो भी जिन्स। मसलन देखो इंसान, इंसान इसमें जिन्स है, एक आदमी हो तो भी मैं क्या कहूंगा ये इंसान है, सौ आदमी खड़े हो तो भी मैं क्या कहूंगा ये इंसान है। देखा वहां लफ्ज बदलता था, एक किताब होती थी तो आप क्या कहते थे ये किताब है, ज्यादा होती थी तो आप क्या कहते थे किताबें हैं। देखा लफ्ज ही बदल लेते थे, लेकिन यहां एक इंसान है तब भी आप क्या कह रहे हैं ये इंसान है, और एक से ज्यादा हो तब भी आप क्या कहते हैं ये इंसान है। तो देखा ये इंसान का लफ्ज कलील पर भी बोला जा रहा है और कसीर पर भी बोला जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, जबकि वहां किताब और किताबें देखो फर्क आ रहा था लफ्जों के अंदर। तो जमा जो है उसका इतलाक दो से ज्यादा पर होता है, जबकि इसमें जिंस का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी होता है, वहां लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं आती। इसमें जिंस और जमा का फर्क समझ में आ गया। तो यहां याद रखिए, ये जो कलीम है इसके बारे में उलमा के दो ग्रोह हैं। बाज उलमा फरमाते हैं ये इसमें जिंस है और बाज उलमा फरमाते हैं ये जमा है। तवज्जो है, बाज उलमा क्या फरमाते हैं, कलीमुन इसमें जिंस है और वो इसम जिसके मुफरत और जिंस में फर्क, यूं कहें वो इसम जिसके मुफरत और जमा में ता के जरिए फर्क किया जाए उसको इसमें जिंस कहते हैं। वो इसम जिसके मुफरत और जमा में ता के जरिए, गोल ता के जरिए फर्क किया जाए उसको इसमें जिंस कहते हैं, जैसे तमरुन और तमरतुन। तमरुन इसमें जिंस है, कलील और कसीर सब पर बोला जाता है। तमरुन का माना खजूर, एक हो तो भी तमरुन, ज्यादा हो तो भी तमरुन, लेकिन अगर आप बिलखुसूस एक खजूर बतलाना चाहते हैं, वहदत बतलाना चाहते हैं, तो फिर इसके साथ गोलता जोड़कर बोलते हैं तमरतुन, हादी ही तमरतुन। तो वाहिद के लिए क्या ले आते हैं, गोलता, और वैसे गोलता को जिंस के लिए इस्तेमाल करना हो तो गोलता को हटा देते हैं। बात समझ में आ गई। आसान लफ्जों में यूं कहो, वो इसम जिसके मुफरत और जमा के अंदर फर्क किसके जरिए किया जाता है, गोलता के जरिए, वो इसमें जिंस है। कलीमुन और कलीमतुन, कलीमुन और कलीमतुन, इसी तरह तमरुन और तमरतुन। क्या तारीफ हुई, वो इसम जिसके जमा और मुफरद में फर्क किसके जरिए किया जाए, ताक गोल ताक के जरिए फर्क किया जाए, उसको क्या कहते हैं, इसमें जिंस। और ये लफ्ज वैसे समझाने के लिए जमा बोलते हैं, ये जमा नहीं है। जमा तो वो है जिसका इतलाक दो से ज्यादा पर होता है, हालांकि इसमें जिंस का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है। क्या लफ्ज मैंने जिक्र किए, वो इसम जिसके मुफरद और जमा में फर्क किसके जरिए किया जाए, गोल ताक के जरिए। जमा से जमा नहीं मुराद, बल्कि क्या मुराद है, इसमें जिंस, जिसके जिंस और इफराद के लिए फर्क किसके जरिए किया जाता है, गोलता के जरिए, वो इसमें जिंस कहलाता है। तो बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं, ये कलीमुन इसमें जिंस है और इसके साथ कभी ता जुड़ती है और कभी ता नहीं जुड़ती, कभी कलीमुन कहते हैं कभी कलीमतुन कहते हैं। और वो इसम जिसके मुफरत और जिंस में फर्क किसके जरिए हो, गोलता के जरिए, उसको क्या कहते हैं, इसमें जिंस, जैसे तमरुन और तमरतुन। और दूसरी दलील वो देते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब, अल्लाह ही की तरफ बुलंद होते हैं पाकीजा कलिमात। इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब, अच्छे कलिमात अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं। सुऊद का क्या माना, ऊपर को चढ़ना। इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब, अल्लाह की तरफ अच्छे कलिमात बुलंद होते हैं। तो ये उलमा फरमाते हैं, जो कहते हैं ये कलीम क्या है, इसमें जिंस। याद रखें जो जमा है, जमा की सिफत या तो जमा ही लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। जमा बतावीले जमात उन किसके हुक्म में है, वाहिद मुअन्नस। तो जमा की सिफत या तो जमा लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। और यहां पर आयत में क्या आया, इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब, अल कलिमु मौसूफ और अत तय्यिब उसकी सिफत, और यह सिफत वाहिद मुजक्कर है, यह सिफत वाहिद मुजक्कर। अगर यह कलीम ये जमा होता, यह कलीम क्या होता,
जमा।
दूसरा ग्रोह तो कहता है यह जमा है, अगर यह जमा होता तो इसकी सिफत जमा आनी चाहिए थी, यानी अलकलिमुत तय्यिबात, अलकलिमुत तय्यिब, या तो इसकी जमा, इसकी सिफत जमा आनी चाहिए थी या वाहिद मुअन्नस आनी चाहिए थी। अलकलिमुत तय्यिबतु, इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिबतु, यूं होना चाहिए था, लेकिन अलकलिम की सिफत न अतय्यिबात है न तय्यिबतुन है। हालांकि जमा की सिफत तो जमा लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस, और दोनों में से एक भी नहीं लाई गई। मालूम हुआ बात वही है जो हमने जिक्र की कि कलीम जमा नहीं है बल्कि इसमें जिंस है। देखिए भाई किताब पर, कहते हैं वल कलीम उबी कसरी लामी, और कलीम का लफ्ज जो है लाम के कसरा के साथ, जिन सुन ये इसमें जिन्स है, ला जम उन जमा नहीं है, कतमरियू व तमरतिन जैसे कि तमर और तमरतुन बई, बी दलील कौलिही ताला अल्लाह ताला के कौल की इस दलील के साथ, इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिबु कि अल्लाह ही की तरफ चढ़ते हैं अच्छे कलिमात। दलील समझ में आ गई कि इसमें जिन्स है तमर और तमरा की तरह है, ये कलिम और कलिमा तमर और तमरतुन की तरह है, और दलील क्या कि अल्लाह की तरफ अच्छे कलिमात बुलंद होते हैं। यहां कलिम की सिफत वाहिद मुजक्कर लाई गई, मालूम हुआ ये जमा नहीं है। जमा की सिफत तो जमा आती है या वाहिद मुअन्नस आती है। उलमा का दूसरा ग्रोह वो कहते हैं कि ये कलिम जमा है, जमा, और वो दलील देते हैं कि कलिम का इतलाक जो है तीन या ज्यादा पर होता है, उससे कम पर नहीं। जैसे जमा का इतलाक भी कम से कम कितने अफराद पर होता है, तीन पर होता है, या तीन से ज्यादा पर जमा का इतलाक होता है, तो इसी तरह कलिम का इतलाक भी तीन या तीन से ज्यादा पर होता है, मालूम हुआ ये जमा है। अगर ये इसमें जिन्स होता है, इसमें जिन्स का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है, तो तीन से कम पर भी इसका इतलाक होना चाहिए था, इस तीन से कम पर भी इसको बोला जाना चाहिए था, लेकिन तीन से कम पर यह लफ्ज नहीं बोला जाता। यह दलील है किस चीज की, कि यह जमा है, तीन से कम पर यह नहीं बोला जाता, मालूम हुआ यह जमा है। नीज आपने आयत जिक्र की कि आयत के अंदर क्या आया, अलकलिमु तय्यिबु, कलीमा अच्छे कलिमात अल्लाह की तरफ बुलंद होते हैं। कहते हैं इसमें भी तावील की गई है, तमाम कलिमात अल्लाह की तरफ बुलंद नहीं होते, जो भी अच्छे कलिमात हो अल्लाह की तरफ बुलंद हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि यहां अल कलिम से मुराद बाजुल कलिम है, बाज कलिमात जो हैं। तो कलिम से क्या मुराद है, बाजुल कलिम मुराद है, तो बाजू गोया यूं समझो यहां पर मुजाफ महजूफ निकालना पड़ेगा, इलैही यसअदु बाजुल कलिमी, बाजू मुजाफ और अल कलिमी मुजाफोन इलै, और अत्तय्यिब ये सिफत है बाजू की, किसकी सिफत है, मुजाफ और मुजाफ इलै आए ना, तो सिफत किसकी आगे आई, मुजाफ की, और बाज मुजक्कर है मुअन्नस है, मुजक्कर है, लिहाजा इसलिए उसकी सिफत तय्यिब लाई गई। जवाब समझ में आया, पहले उलमा ने क्या कहा था कि अल कलिम क्या है, इसमें जिन्स है, इसलिए इसकी सिफत मुजक्कर लाई गई, अगर ये जमा होता तो सिफत क्या लाई जाती, जमा या वाहिद मुअन्नस लाई जाती। तो ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ये तय्यिब कलिम की सिफत किस तावील में है, बाजुल कलिम की तावील में है, तो कलिम से मुराद बाजुल कलिम है, या यहां बाज का लफ्ज क्या है, मुजाफ महजूफ है, तो बाजुल कलिम यह हुआ मौसूफ और अब तय्यिब उसकी क्या हुई, सिफत, और बाज का लफ्ज तो मुफरद है, वो तो जमा नहीं, मुफरद है मुजक्कर है, तो उसकी सिफत तय्यिब ही आएगी, उसकी सिफत तो जमा या वाहिद मुअन्नस नहीं आ सकती, तो ये अल तय्यिब कलिम की सिफत नहीं है, बल्कि किसकी सिफत है, बाजुल कलिम की सिफत है। जवाब समझ में आया, वकीला और कहा गया है जम उनके कलिम का लफ्ज जमा है, हैसु ला यकउ इल्ला अला सलासी, इस हैसियत से कि यह वाकई नहीं होता, यानी यह बोला नहीं जाता, इल्ला अला सलासी मगर कितने पर, तीन पर, फसाइदन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा पर बोला जाता है, मालूम हुआ यह इसमें जिन्स नहीं है बल्कि जमा है, इसमें जिन्स का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है, एक पर भी बोला जाना चाहिए, लेकिन यह कम से कम कितने पर बोला जाता है, तीन या तीन से ज्यादा पर। तो कहते हैं वकील जमउन ये जमा है, हैसु ला यकउ इल्ला अला सलासी फसाइदन, इस हैसियत से कि ये वाकई नहीं होता, यानी इसका इतलाक नहीं किया जाता, या यूं कहें इसको बोला नहीं जाता, इल्ला अला सलासी मगर तीन पर, फसाइदन या तीन से ज्यादा पर, फसाइदन ये साइदन याद रखो हाल वाकई होता है, इसका मान तर्जमा करते हैं या ज्यादा पर, या तर्जमा करते हैं और ज्यादा पर, तीन पर और ज्यादा पर, जैसे मुनासिब हो मौके महल के एतबार से। असल में यह साइदन हाल है, और हाल क्या होता है, मनसूब होता है, जानी जैदुन राकिबन, यह राकिबन क्या है, हाल, तो देखो मनसूब है, हाल मनसूब होता है। حال ہے اور عبارت محذوف ہے، عامل اس کا محذوف ہے، فیزید صاعدا، فیزید فیزید صاعد، لا يقع الا على الثلاث، یہ واقع نہیں ہوتا مگر تین پر، فیزید یا اس سے زیادہ پر صاعدا، اوپر چڑھتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے، تو پوری عبارت گویا یوں ہو جائے گی، فیزید ما یقع ہوا علیہ صاعدا، کہ جس پر یہ واقع ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، صاعدا، اوپر چڑھتے ہوئے، زیادہ ہوتے ہوئے، تو یہ حال ہوا ما یقع ہوا علیہ سے بھائی، تو یہ واقع نہیں ہوتا الا علی الثلاث، فصاعدا، تین پر اور زیادہ پر، والکلم الطیب مؤول ببعض الکلم، اور آپ نے آیت دلیل میں ذکر کی تھی، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں آیت میں جو آیا والکلم الطیب مؤول، اس میں تاویل کی گئی ہے ببعض الکلم، کس کے ساتھ؟ بعض الکلم کے ساتھ، کہ الکلم سے کیا مراد ہے؟ بعض الکلم، یا یہاں بعض کا لفظ مضاف محذوف ہے، اور الطیب کس کی صفت ہے؟ بعض الکلم کی صفت ہے، کلم کی صفت نہیں ہے بھائی. تو پہلے گروہ والے پھر جواب دیتے ہیں، پہلے گروہ والے انہوں نے کیا کہا تھا، کلم اس میں جنس ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کلم جمع ہے، اور جمع کا اطلاق تو تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے، اسی طرح کلم کا لفظ بھی عربی زبان میں تین یا زیادہ پر بولا جاتا ہے، معلوم ہوا یہ جمع ہے، اس میں جنس نہیں. تو وہ پہلے گروہ والے وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ استعمال کی بات کر رہے ہیں، ایک ہے استعمال، ایک ہے وضع، ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے، وہ وضع اور چیز ہے، وضع کا معنی مقرر کرنا، کیا معنی؟ مقرر کرنا. مثلا دیکھو، میں یہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ ہر ہر لفظ کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں کس لفظ کو کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. مثلا دیکھو، میں نے کہا گلاس، فوراً آپ کے ذہن میں پانی پینے والے ایک برتن کی صورت آ گئی. میں نے کہا قلم، فوراً آپ کے ذہن میں ایک آلے کا تصور آ گیا جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے. تو اس کا نام ہے وضع. وضع کا معنی ہے مقرر کرنا، متعین کرنا. دیکھو، آپ کو پتا ہے کہ اردو میں گلاس کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے؟ پانی پینے کے برتن کے لیے. یا اسی طرح آپ کو علم ہے کہ قلم کا لفظ اردو میں کس کے لیے متعین ہے؟ لکھنے کے آلے کے لیے. جیسے میں دیکھو، میں لفظ بولتا جاؤں گا، آپ معانی سمجھتے جائیں گے، بارش، پہاڑ، پانی، آگ، گرمی، سردی، بہار، خزاں، صبح، شام، سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہر ہر لفظ کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اردو میں یہ والا لفظ کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کس معنی کے لیے. تو یہ جو لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وضع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع. اس کو وضع کہتے ہیں. تو دیکھو، میں بتلا رہا تھا آپ کو کہ ایک ہے وضع اور ایک ہے استعمال. وضع، ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے، مقرر کیا جائے، اور ایک بعد میں اس کا استعمال ہے. وضع اور چیز ہے، استعمال اور چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وضع اور چیز ہے، استعمال اور چیز ہے. ہم نے جو بات کی تھی کہ کلم اس میں جنس ہے، جمع نہیں ہے، ہم نے وضع کے اعتبار سے بات کی تھی کہ جیسے تمرن اور تمرتن میں تمرن کس کے لیے وضع ہے؟ جنس کے لیے. اسی طرح کلم اور کلمتن میں جو کلم ہے، یہ بھی کس کے لیے وضع ہے؟ جنس کے لیے وضع ہے. اور آپ دلیل دے رہے ہیں استعمال کی، کہ اس کو استعمال کس میں کیا جاتا ہے؟ تین یا دین سے. بھائی ہم بات کر رہے ہیں وضع، ہم کہتے ہیں وضع کے اعتبار سے جنس ہے، اور آپ دلیل کیا کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ استعمال کو. کہ عرب اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو استعمال کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے بھائی، اصل اعتبار وضع کا ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ وضع کا ہے. وضع کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں یہ اس میں جنس ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں استعمال کی. استعمال اور چیز ہے. جیسے دابا، دابا کا لفظ وضع تھا ہر زمین پر چلنے والے جاندار کے لیے. زمین پر جو بھی چیزیں چلتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ دابا ہیں. چاہے چیونٹی چل رہی ہے، چاہے انسان چل رہا ہے، چاہے ہاتھی چل رہا ہے، چاہے گھوڑا چل رہا ہے، چاہے کوئی حیوان چل رہا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ دابا. لیکن بعد میں اس لفظ کو عرب وغیرہ نے خاص کر لیا، جو سواری کے جانور ہیں ان کے لیے، گھوڑا، گدا وغیرہ، ان کو دابا کہنے لگے. क्या कहने लगे, दाबा। देखो अब वजा और चीज है, वजा था सबके लिए और इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए हो रहा है, सवारी या बोझ उठाने वाले जानवरों के लिए। तो वजा और चीज और इस्तेमाल और चीज और एतबार किसका होता है, वजा का एतबार होता है, इस्तेमाल का एतबार नहीं होता। तो हमने जो दलील दी कि कलीम क्या है, इसमें जिंस है, हमने वजा के एतबार से कहा। और आप जो दलील दे रहे हैं कि ये तीन या तीन से ज्यादा पर बोला जाता है, आप तो इस्तेमाल को दलील बना रहे हैं, इसको आप दलील नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई। दूसरा इन्होंने जवाब दिया था कि आयत में अलकलिमु तय्यिबु, तो ये अलकलिमु तय्यिबु इसमें तावील की गई है किसके साथ, बाजुल कलीम के साथ। मालूम हुआ अत्तय्यिब कलीम की सिफत नहीं है बल्कि किसकी सिफत है, बाजुल कलीम की सिफत है। उसका भी जवाब देते हैं पहले ग्रोह वाले, पहले उलमा जो हैं वो कहते हैं कि भाई बाज को यहां मुजाफ महजूफ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाजुल कलीम तो खुद कलाम से ही समझ में आ रहा है, खुद कलाम से ही, भाई खुद कलाम से ही समझ में आ रहा है कि कलीम से बाज़े कलीम मुराद हैं, तमाम कलीम मुराद नहीं। भाई बाज़ुल कलीम किस तरह समझ में आ रहा है कलाम से, कहते हैं देखिए अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं अच्छे कलिमात, मुझे आप बताइए तमाम अच्छे कलिमात अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं या जो इखलास से कहे गए हों वो चढ़ते हैं।
इखलास से
कहे, जाहिर सी बात है एक शख्स आदमी है दिल में कुछ और है जुबान से वैसे ही अच्छे अच्छे लफ्ज कह रहा है तो ये अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। भाई मालूम हुआ तमाम अच्छे कलिमात अल्लाह की तरफ नहीं बुलंद होते बल्कि बाज अच्छे कलिमात, यानी बाज यूं कहो मकबूल कलिमात जो अल्लाह के यहां क्या हो, मकबूल हो, जिनको अल्लाह कबूल फरमा लें। तो कलीमे तैयब से तमाम कलीमे तैयब नहीं मुराद बल्कि बाज कलीमे तैयब मुराद हैं। लिहाजा ये बाज को मुजाह महजूफ निकालने की जरूरत नहीं है, बाजियत तो खुद इस कलाम से ही समझ में आ रही है कि अल्लाह की तरफ वो बाज अच्छे कलिमात ही चढ़ते हैं और वो कौन से हैं जो अल्लाह के यहां मकबूल होते हैं। बात समझ में आ गई। और नीज वो उलमा जो कहते हैं कि कलीमुन जमा है, वो पहले ग्रोह की इस दलील पर फिर एतराज करते हैं। कौन सी दलील, इलैही असदुल कलिम तैयब, इन्होंने क्या कहा था कलीम की सिफत क्या आई, तैयब आई, मालूम हो ये जमा नहीं, अगर ये जमा होती तो इसकी सिफत तैयबात या तैयबतुन आनी चाहिए थी। तो वो जो दूसरे ग्रोह वाले फिर एतराज करते हैं कि अरबी का जाब्ता है, उलमा ने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि वो जमा जिसके जमा और मुफरद में गोल ता के जरिए फर्क किया जाए उसकी सिफत मुजक्कर लाना भी सही मुअन्नस लाना भी सही। बात समझ में आ गई। वो इसम जिसके मुफरद और जमा में किसके जरिए फर्क किया जाए, गोलता के जरिए, जैसे तमरुन और तमरतुन और कलिमुन और कलिमतुन, तो जिसके मुफरद और जमा के अंदर गोलता के जरिए फर्क किया जाए उस जमा की सिफत मुजक्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी। मालूम हुआ कलीम भी वो इसम है जिसके मुफरद और जमा में फर्क किसके जरिए है, गोलता के जरिए, तो इस कलीम की सिफत मुजक्कर भी लाना जायज, मुअन्नस लाना भी जायज, अल कलिमु तय्यिब लाना भी जायज, अल कलिमु तय्यिबतु लाना भी जायज। लिहाजा आयत को दलील बनाना सही नहीं। आपने तो आयत को दलील बनाया कि आयत में क्या आया है, अल कलिमु तय्यिब, ये तो जमा नहीं, अगर जमा होता तो सिफत क्या आनी चाहिए थी, अब तय्यिबात या नहीं, तवज्जो, अगर ये जमा होता तो सिफत क्या आनी चाहिए थी, अब तय्यिबात और तय्यिबतुन, और सिफत तो क्या आई है, तय्यिबुन आई है। ये दलील है किस चीज की कि ये जमा नहीं, तो कहते हैं नहीं इसको आप दलील नहीं बना सकते क्योंकि अरबी जुबान का जाब्ता उलमा ने क्या जिक्र किया है अपनी किताबों में कि वो जमा जिसके मुफरद और जमा में फर्क किसके जरिए हो, गोलता, उसकी सिफत मुजक्कर लाना भी जायज, मुअन्नस लाना भी जायज। तो जब मुजक्कर लाना जायज है तो लिहाजा मुजक्कर भी ले आए, लिहाजा इसको आप दलील नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, वो जमा कि उसके मुफरद और जमा में फर्क किससे हो, गोलता, मालूम है ये क्या है, जमा ही है, जमा ही है, और इस जमा की सिफत मुजक्कर भी ला सकते हो और मुअन्नस भी ला सकते हैं, तो इसलिए कुरान में इसकी सिफत क्या आ गई, मुजक्कर आ गई, तो इसे कोई हर्ज नहीं क्योंकि जाब्ता है इसकी सिफत मुअन्नस भी आ सकती है, यह है जमा ही। तो वो फिर पहले ग्रोह वाले जवाब देते हैं कि इस जाब्ते के अंदर जो जमा का लफ्ज जिक्र है उससे जिंस मुराद है, जमा मुराद नहीं है। इससे क्या मुराद है? जेंस मुराद है, जमा मुराद नहीं है, जमा मुराद नहीं है। और दलील यही है कि जमे हकीकी के अंदर यह जाब्ता जारी नहीं होता भाई। जमे हकीकी के अंदर, जमे हकीकी के अंदर मुजक्कर मुअन्नस उनकी सिफत ला सकते हो? नहीं। जमे हकीकी की सिफत क्या आएगी हमेशा? तय्यबात या तय्यबतुन, यानी जमा या वाहिद मुअन्नस। यूं कहो जमा, जमा की सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा ही लाई जा सकती है। और ये जो जाब्ते के अंदर लफ्ज जिस जमा आया, इस जमा से जमा नहीं मुराद, बल्कि इससे क्या मुराद है? इसमें जिन्स ही मुराद है। यानी यूं कहो कि इसमें जिन्स, जिसके मुफरत और जिन्स में फर्क किसके जरिए होता है? ता के जरिए। उसकी सिफत मुजक्कर भी लाई जा सकती है और मुअन्नस। तो ये इसमें जिन्स का जाब्ता है। अगरचे इबारत में उलमा ने लफ्ज जमा को जिक्र कर दिया है समझाने के लिए, आसानी के लिए, लेकिन दरअसल यहां जमा मुराद नहीं है, क्योंकि जमा के अंदर यह जाब्ता जारी नहीं होता। जमा की सिफत मुजक्कर और मुअन्नस दोनों लाना जायज नहीं, वहां जमा ही सिफत लाना पड़ती है या वाहिद मुअन्नस लाना पड़ती है। नीज वो उलमा जो फरमाते हैं कि ये इसमें जिन्स है, वो दलील देते हैं कि कलीमुन ये जमा का वजन नहीं। जमा के मखसूस औजान हैं भाई, आप किताबों में पढ़ते हैं, सर्फ और नहव की किताबों में जमा के मखसूस औजान होते हैं, जैसे कलम की जमा अकलाम, किताब की जमा कुतुब, अस्वद की जमा सूद। तो जमा के अपने अपने औजान हैं भाई, जो उलमा ने किताबों में दर्ज किए हैं, और कलीमुन ये जमा के औजान में से नहीं, फाइल वजन जमा के औजान में से नहीं आता। इससे भी पता चला कि ये जमा नहीं है, ये इसमें जिन्स है, क्योंकि ये जमा का वजन ही नहीं है। दलाइल समझ में आ गए। तो कहते हैं वल कलीमु तय्यिबु मुअव्वलुन बिबाज़िल कलीम। जी फिर देख लें तर्जमा, कहते हैं वल कलीमु बिकसरिल लामी जिन्सुन ला जमउन कतमरिउ व तमरतिन। कलीम जो है लाम के कसरा के साथ, ये इसमें जिन्स है, जमा नहीं है। कतमरिउ व तमरतिन, जैसे कि तमर और तमरतुन। भी दलील कौल ही ताला, अल्लाह ताला के कौल जो है ये दलील है कि इलैही असादुल कलीमु तय्यिब। वकील जमउन हैसु ला यकउ इल्ला अला सलासी फसाइदन। और कहा गया है कि कलीम जमा है इस हैसियत से कि ये वाक़े नहीं होता इल्ला अला सलासी फसाइदन, मगर तीन पर या ज्यादा पर। वल कलीमु तय्यिबु मुअव्वलुन बिबाज़िल कलीमी। और नीज जो कलीम तय्यिब आयत के अंदर आया, इसकी तावील की गई है बाज़ुल कलीम के साथ, कि कलीम से क्या मुराद है? बाज़ुल कलीम, या यहां पर बाज़ का लफ्ज मुजाफ महजूफ है। देखा, पहला कौल कवी है, दूसरा कौल ज़ईफ है साहिब जामी के नजदीक भी। इसीलिए इसको वकीला, वकीला जमउन हैसु ला यकउ इल्ला अला सलास, कीला के साथ जिक्र किया, और कीला सीगाए तमरीज है, यानी जिसके जरिए कमजोर कौल को जिक्र किया जाता है। वल्ला मुफीहा लिल जिन्सी वत्ता उलिल वहदती। लाम इसके अंदर, यानी अलिफ लाम जो आया अल कलिमा के अंदर, ये अलिफ लाम जिन्सी है। वत्ता उलिल वहदती, और ये जो ता आई ये वहदत के लिए है। तवज्जो है, ये ता किस लिए है? वहदत के लिए है भाई। तो यहां ये बतला रहे हैं आपको कि अल कलिमा में अलिफ लाम जिन्सी है और ता वहदत के लिए है, वहदत के लिए है। भाई आप खुद गौर कर लें, अल कलिमा तो इसमें यह अलिफ लाम कौन सा है? मैंने आपको बताया था एक अलिफ लाम इस्मी है और एक अलिफ लाम हर्फी। अलिफ लाम इस्मी जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर आए, और अल कलिमा न इसमें फाइल का सीगा है न इसमें मफूल का। मालूम हुआ यह अलिफ लाम इस्मी नहीं। जब अलिफ लाम इस्मी नहीं तो फिर यह अलिफ लाम हर्फी हुआ, और अलिफ लाम हर्फी कभी जायदा होता है और कभी गैर जायदा। तो ये तो जायदा नहीं है ये, क्योंकि अलिफ लाम जिन्सी, ये भी आपको बतला रहे हैं। जायदा वो होता है जो अपने माना का फायदा नहीं देता कलाम के अंदर, और फिर वो कलिमे से कभी जुदा हो सकता है, कभी जुदा नहीं हो सकता, कभी वो किसी और हर्फ के इवज में होता है, कभी वैसे ही होता है। तो बहरहाल, तो ये अलिफ लाम हर्फी की जो गैर जायदा हैं, और वो चार किस्म पर हैं: अलिफ लाम जिन्सी, अलिफ लाम इस्तिगराकी, अलिफ लाम अहदे खारिजी, और अलिफ लाम अहदे ज़हनी। मैंने बताया था अलिफ लाम हर्फी वो है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। अगर इशारा जिंस की तरफ हो तो अलिफ लाम जिंसी, अगर तमाम अफराद को इशारा हो तो अलिफ लाम इस्तिगराकी, अगर बाज़ मुतायन को जो खारिज में मुतायन है उनकी तरफ इशारा हो तो अलिफ लाम महद खारिजी, और अगर बाज़ गैर मुतायन यानी जो जहन में है उनकी तरफ इशारा हो तो अलिफ लाम महद जहनी है भाई, यानी जहन में उस जिंस के कोई अफराद का तस्वुर करके उनकी तरफ अलिफ लाम के जरिए इशारा कर दिया। तो यहां पर ये क्या बता रहे हैं, अलिफ लाम जिंसी है। वजह यह कि ये आगे तारीफ करने लगे हैं, तवज्जो है तारीफ, और तारीफ जो है वो जिंस और माहियत की तारीफ की जाती है, अफराद की तारीफ नहीं की जाती। मसलन मैं इंसान की तारीफ करने लगा हूं तो इंसान के अफराद कौन है, जैद अमर बकर खालिद वगैरह, कितने ही सैकड़ों हजारों अरबों अफराद हैं भाई। तो अब अफराद की तारीफ नहीं, अफराद की तारीफ नहीं, मैं जैद की तारीफ करूंगा तो जैद की तारीफ तो बकर पे सादिक नहीं आएगी, बकर की तारीफ करूंगा वो तो खालिद पर सादिक नहीं आएगी। तवज्जो है, तो तारीफ अफराद की नहीं की जाती है क्योंकि हर फर्द दूसरे से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, उनमें फर्क होता है, तो तारीफ अफराद की नहीं की जाती बल्कि तारीफ किसकी की जाती है, माहियत की जाती है। मालूम है ये अलिफ लाम इस्तिगराकी नहीं हो सकता। दूसरा अलिफ लाम अहद खारिजी वो भी नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि अलिफ लाम अहद खारिजी वो है जिसमें किसी मुतायन की तरफ इशारा किया जाए। तो अल कलीमा का तर्जमा क्या होगा अगर अलिफ लाम अहद खारिजी हो, वो वाला कलीमा, अर रजुल का क्या माना था, वो आदमी, तो यहां पर भी अल कलीम का क्या माना होगा, वो वाला कलीमा, और पीछे कहीं कलीमा गुजरा है कि जिसकी तरफ इशारा हो सके, पीछे तो ये तो किताब का पहला लफ्ज है बिस्मिल्लाह के बाद, तो पीछे अल कलीमा का जिक्र भी नहीं आया कि उसकी तरफ अल कलीमा के जी इशारा हो जाए। मसलन मैंने मिसाल जिक्र की थी अलिफ लाम अहद खारिजी की कि कल मेरे पास एक आदमी आया था, जा अनी रजुलन नकेरा लेकर आया, कल मेरे पास कोई एक आदमी आया था, फिर अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने उसी आदमी का इकराम किया, तो अब मैं अलिफ लाम लेकर आऊंगा, फअकरम तुर रजुला, फअकरम तु अर रजुला, मैंने इकराम किया उस आदमी का, आप समझ गए यानी कौन सा आदमी मुराद है, वही जो पहले जिक्र हुआ था। तो यहां पर भी अगर अलिफ लाम अहद खारिजी बनाए अल कलीमा में तो पीछे कलीमा का जिक्र जरूरी है, तो इसके जरिए फिर इशारा हो जाएगा वो वाला कलीमा जो अभी पीछे गुजरा था, लेकिन पीछे तो कोई कलीमा का लफ्ज नहीं गुजरा, मालूम हुआ ये अलिफ लाम अहद खारिजी भी नहीं। और नीज अलिफ लाम अहद जहनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ लाम अहद जहनी जो है वो तो नकेरा के हुक्म में होता है, वो माना के एतबार से नकेरा होता है। मैंने आपको बतलाया था कि जो अलिफ लाम अहद जहनी होता है लफ्जों के एतबार से तो लफ्ज को मारिफा बना देता है, लेकिन माना के एतबार से वो नकेरा ही रहता है। जैसे मिसाल मैंने जिक्र की थी कुरान से, इन्नी अखाफु अन याकुलहु ज़िबु, अज़िबु अलिफ लाम आया, तो ये लफ्जों के एतबार से तो मारिफा है लेकिन माना के एतबार से नकेरा है। नकेरा ज़िबुन हो बगैर अलिफ लाम के तर्जमा क्या होगा, कोई भेड़िया, और यहां पर अज़िब आया इसका भी वही तर्जमा करेंगे कोई भेड़िया। इन्नी अखाफु अन याकुलहु ज़िबु, मुझे खौफ है कि इनको कोई भेड़िया खा जाएगा। तो अगर यहां अल कलिमा में अलिफ लाम कौन सा मुराद ले लें, अलिफ लाम अहद जहनी मुराद ले लें, तो इस सूरत में अल कलिमा से मुराद होगा कोई एक कलिमा, यानी मुतायन ही नहीं है, मुतायन ही नहीं, तो गैर मुतायन यानी कलिमा जिसकी तारीफ की जा रही है वो मजहूल हो गया, फिर भाई कौन सा कलिमा मुराद है, कौन सा कलिमा मुराद है, ये मजहूल हो जाएगा भाई, गैर मुतायन हो जाएगा, और गैर मुतायन की तारीफ नहीं की जाती बल्कि तारीफ तो किसकी की जाएगी, मुतायन की जाएगी। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा ये अलकलीम में न अलिफ लाम इस्तिगराकी है, न अहदे खारजी है, न अहदे जहनी है, बल्कि अलिफ लाम जिंसी है, अलिफ लाम जिंसी है। वत्ता उलिल वहदती, और ये जो ता है ये वहदत के लिए है, ये ता किस लिए है, वहदत के लिए है। याद रखो अरबी जुबान में ये जो गोल ता है, ये जो ताए मरबूता है, ये कई मानी के लिए इस्तेमाल होती है। गालिबन दो तीन सबक कबल भी मैंने ये तफसील बयान की थी। याद रखो ये जो ताए मरबूता है ये कभी कभार तानीस के लिए अरबी में लाते हैं। जारिबुन का माना पिटाई करने वाला मर्द और जारिबतुन का माना पिटाई करने वाली औरत, तो ये जारिबतुन के अंदर जो ता आई ये किस लिए है, तानीस के लिए है। और कभी ये ता वहदत के लिए लाई जाती है, एक बतलाने के लिए कि एक फर्द है, जैसे तमरुन और तमरतुन, तमरतुन के अंदर ये ता किस लिए है, वहदत के लिए है। मुराद क्या है? एक खजूर, एक खजूर, तो ये वहदत के लिए है। और कभी कभार ये जो ता है ये तजकीर के लिए लाई जाती है, यानी मुजक्कर के लिए। किसके लिए? मुजक्कर के लिए। आप आज तक तो आपने यही पढ़ा था कि ताए मरबूता जो है तानीस के लिए आती है, लेकिन आज आपको देखो एक और फायदा भी हासिल हो गया कि ये ता कभी तजकीर के लिए भी आती है। जैसे आपने पढ़ा है कि सलासा से लेकर आशारा तक ये जो अदद हैं इनका मादूद अगर मुजक्कर हो तो अदद के साथ गोल ता लेकर आएंगे। मैं रजुल के बारे में बतलाना चाहता हूं, रजुल मुजक्कर है, तो अब मैं तीन आदमी कहना चाहता हूं तो ता लेकर आऊंगा, सलासतु रिजालिन। देखा ये ता किसके लिए लाते हैं? मुजक्कर के लिए। अरबातु रिजालिन, खमसतु रिजालिन। और अगर मादूद मुअन्नस है फिर ये गोल ता नहीं लाएंगे। सलासु निस्वतिन, तीन औरतें। अरबाउ निस्वतिन, खमसु निस्वतिन। देखो मुअन्नस के लिए गोल ता नहीं ला रहे, मालूम हुआ ये ता किस लिए थी? तज़कीर के लिए थी, मुजक्कर के लिए थी, तो मुजक्कर के लिए आएगी, मुअन्नस के लिए नहीं आएगी। तो अरबी में ये ताए मरबूता कई मानी के लिए आती है, कभी ये तानीस के लिए आएगी, कभी वहदत के लिए आएगी, कभी तज़कीर के लिए आएगी, इसी तरह कभी इवज़ के लिए आएगी। जैसे इदतुन, वादा यईदो इदतन। इदतुन असल में क्या था? वियदुन था, और शुरू में से वाव को हजफ किया और उसके इवज आखिर में क्या ले आए? गोलता। तो ये ता इवज में आई है, ता इवज में आई। कभी ये ता मस्दरियत के लिए आती है, मस्दर बनाने के लिए। जैसे जारिब का माना पिटाई करने वाला, और इसे मैं मस्दर बनाना चाहता हूं तो याए मुशद्दद और गोलता साथ जोड़ दूंगा। जारिबियत, जारिबियत का माना है जारिब होना। मजरूब, जिसकी पिटाई की जाए, और मजरूबियत मजरूब होना। बात समझ में आ? फाइल, काम करने वाला, और फाइलियत फाइल होना। तवज्जो है
जी।
और इसी तरह शारिब, इसे मस्तर बनाओ शारिबियत, यानी शारिब होना। मशरूबियत क्या माना? मशरूब होना। ये होना किस लिए आता है? मस्तर के लिए भाई। तो कभी ये ताय मरबूता किस लिए लाई जाती है? मस्दर बनाने के लिए। और इसी तरह कभी ये ताय मरबूता लाते हैं लिन नकल, नकल करने के लिए, यानी मिनल वस्फीयति इलल इस्मीयति। कभी ये ता किस लिए लाते हैं? लिन नकल, नकल करने के लिए। क्या माना नकल करना? यानी नकल करना किसी इसम को वस्फीयत से इस्मीयत की तरफ, वसफ से नकल करके उसको इसम बना लेना। जैसे काफियतुन, काफिया, काफी का माना है काफी होना। जो भी चीज आपको काफी हो उसको क्या कहेंगे? काफी, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन फिर इसी के साथ गोलता जोड़कर इसको इसम बना लिया गया किताब के लिए, तो क्या बन गया? काफियतुन। तो ये देखो ये ता किस लिए है? नकल करने के लिए। अब ये इसम बन गया, अब ये सिफत नहीं, सिफत नहीं। और कभी ये ता मुबालगे के लिए आती है, किस लिए आती है? मुबालगे के लिए आती है। जैसे अल्लामतुन, अल्लामा मुबालगे का सीगा है, और इसके साथ ये जो ता है ये भी किस लिए है? मुबालगे के लिए है, या ताकीद मुबालगा के लिए है भाई। तो ये ता इन मानी के लिए आती है। कौन कौन से मानी के लिए? फिर दोहरा लें, कभी ये ता आएगी तानीस के लिए, कभी वहदत के लिए, कभी ये तज़कीर के लिए, कभी ये मस्तरियत के लिए, कभी ये इवज़ के लिए, कभी ये नकल के लिए, और कभी मुबालगे के लिए आएगी। तो ये सात अकसाम ता हैं। तो यहां आपको बतला रहे हैं व ताउलिल वहदती की, ये ता किस लिए है? वहदत के लिए है, जो एक होने पर दलालत करती है। तो कहते हैं वल्लाम उफीहा लिल जिनसी व ताउल वहदती। लाम जो है यानी अलिफ लाम अल कलिमा के अंदर लिल जिनसी, ये जिन्स के लिए है। व ताउल वहदती, और ये ता किस लिए है? वहदत के लिए है। वला मुनाफात बैनहुमा जी, यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। इस मकाम को अच्छी तरह समझ लें भाई, इस मकाम को याद रखो। एक है वहदत और एक है कसरत। वहदत का माना एक होना और कसरत का माना ज्यादा होना, यानी यूं कहो वहदत का माना वाहिद होना और कसरत का माना कसीर होना, कसीर होना। तो वहदत का क्या माना है? एक होना, और कसरत का माना कसीर होना। याद रखो ये जो जिंस है, जिंस के अफराद कसीर होते हैं, जिंस के अफराद कसीर होते हैं। तो यहां पर अलिफ लाम जिंसी आया अल कलिमा में, और जिंस के अफराद कसीर होते हैं। अल कलिमा के अफराद भी कसीर हैं, इसम भी है, फेल भी है और हर्फ भी है। नीज इसम भी हजार हा हैं, फिर फेल भी हजार हा हैं और हर्फ भी बहुत सारे हैं। तो देखा इसम, फेल और हर्फ ये किसके अफराद हैं? कलिमा के, क्योंकि कलिमा क्या है? जिंस है, और जिंस में कसरत होती है उसके अफराद कसीर होते हैं। और इसके साथ आखिर में ता जुड़ गई, और ता तो वहदत के लिए है, ता तो वहदत के लिए है। तो ये अलिफ लाम और ता में मुनाफात आ गई। अल कलिमतु, अल कलिमतु में अलिफ लाम जिंसी है, इससे क्या पता चला कि इस कलिमा के अफराद कसीर हैं। और अल कलिमा के आखिर में ता वहदत की है, और वहदत क्या बतला रही है कि फर्द एक है। अल कलिमतुम का आगाज कसरत पे दलालत कर रहा है, और अल कलिमतुम का इख्तिताम वहदत पे दलालत कर रहा है, और वहदत और कसरत तो एक दूसरे के मुकाबिल हैं। बात समझ में आ गई? तो ये एक ही चीज वाहिद भी हो और कसीर भी हो, ये तो नहीं हो सकता। दोनों में तो मुनाफात है, अगर कसरत है तो वहदत नहीं, और अगर वहदत है तो कसरत नहीं, तो दोनों में मुनाफात है। तो अब उसका जवाब देने लगे हैं साहिब जामी। याद रखना वहदत दो किस्म पर है, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी वो है जिसमें एक ही फर्द होता है, जिसमें कसरत किसी भी एतबार से नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? वहदत हकीकी। जैसे वहदत फर्दी या वहदत शख्सी। वहदत फर्दी का क्या माना? एक फर्द हो। वहदत फर्दी का क्या माना? एक फर्द हो। जैसे रजुल रिजाल का एक फर्द है, रजुल क्या है? एक फर्द है। या जैसे किताब कुतुब का एक फर्द है, तो इसको वहदत फर्दी कहते हैं, या इसी तरह वहदत शख्सी कहते हैं, जो एक ही शख्स हो, एक ही फर्द हो। या जैसे मसलन जैद है, ये इंसान का एक फर्द है, बकर जो है वो इंसान का एक फर्द है, तो इसको वहदत फर्दी और वहदत शख्सी कहते हैं। बात समझ में आ गई? फिर सुने, वहदत दो किस्म पर, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी वो है जिसमें कसरत ना हो, सिर्फ एक ही हो, जैसे वहदत फर्दी और वहदत शख्सी। वहदत फर्दी का क्या माना? एक फर्द। वहदत शख्सी का क्या माना? एक शख्स। तो इसमें कसरत नहीं है। और एक है वहदत मजाजी। वहदत मजाजी उसमें अफराद तो कसीर होते हैं, लेकिन सब में वहदत होती है बाई लिहाज कि उन सब की जिंस एक ही है। तवज्जो से, वहदत मजाजी वो है जिसके अफराद क्या होते हैं? कसीर होते हैं, लेकिन उन सब में वहदत होती है, वो सब एक होते हैं बाई एतबार कि उनकी जिंस एक है। जैसे इंसान, गाय, बैल, बकरी, देखो कसीर हैं अफराद, लेकिन इन सब में वहदत है बाई लिहाज कि इन सब की जिंस एक ही है, सब हैवान हैं। सबकी जिंस क्या है? हैवान है। तो अफराद तो कसीर हैं, लेकिन उनमें वहदत है बाई लिहाज के जिंस एक ही है। बात समझ में आ गई? तो वहदत हकीकी वो जिसमें फर्द ही एक होता है, और वहदत मजाजी जिसमें अफराद तो कसीर होते हैं लेकिन उन अफराद में वहदत होती है बाई लिहाज के वो उनकी जिंस एक होती है। तो इसको कहते हैं वहदत जिंसी। इसको क्या कहते हैं? वहदत जिंसी कहते हैं। इसी तरह वहदत नौई है। वहदत नौई भी वो है जिसमें अफराद तो कसीर होते हैं लेकिन उनमें वहदत होती है बई एतबार कि उनकी नौ एक ही है। जैसे जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह, अफराद तो कसीर हैं लेकिन इनमें वहदत है बई लिहाज कि इनकी नौ एक ही है। सब इंसान हैं, सब हैवान नातिक हैं, सब क्या हैं? तो लिहाजा एक वहदत जिंसी है, उसमें भी अफराद कसीर लेकिन वहां वहदत है बाई लिहाज के जिंस एक है। एक वहदत नौई है जहां अफराद का सीर हैं लेकिन उनमें वहदत है बई लिहाज के नौ एक है। इसी तरह वहदत सिन्फी भी है, सिन्फ सौद नूनफा, सिन्फ का मौना वाली किस्म, जैसे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी देखो लाखों करोड़ों लोग हैं जो क्या हैं, पाकिस्तानी हैं। तो अफराद तो कसीर हैं लेकिन वहदत है बई लिहाज कि इनकी सिन्फ एक ही है, इनकी किस्म एक ही है, सब पाकिस्तानी हैं। तो हासिल कलाम क्या हुआ, वहदत कितनी किस्म पर, दो किस्म पर, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी वो है जहां फर्द भी एक ही होता है, और वहदत मजाजी उसमें अफराद तो कसीर होते हैं लेकिन लेकिन वहां वहदत होती है बाई लिहाज की, जिंस एक है या नौ एक है या सिन्फ एक है। हासिल कलाम ये, हासिल कलाम ये कि वहदत की चार सूरतें बन गई, एक वहदत फर्दी, एक वहदत जिंसी, एक वहदत नौई और एक वहदत सिन्फी। और अलिफ लाम जिंसी की मुनाफात किसके साथ है, सिर्फ वहदत फर्दी के साथ मुनाफात है। अलिफ लाम जिंसी की वहदत जिंसी या वहदत नौई या वहदत सिन्फी के साथ मुनाफात नहीं, क्योंकि अलिफ लाम जिंसी से भी कसरत का पता चला और वहदत नौई सिन्फी या जिंसी से भी वो उसमें भी अफराद कसीर होते हैं तो उसमें कोई मुनाफात नहीं। तो इस तरह से अगर वहदत फर्दी मुलाद लेते फिर मुनाफात लाजिम आती है, बाकी सूरतों में मुनाफात लाजिम नहीं आती। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला मुनाफात बैनहुमा, और इन दोनों में कोई मुनाफात नहीं, जिंस और वहदत में कोई मुनाफात नहीं। जिंस और वहदत फर्दी में तो मुनाफात है लेकिन जिंस और वहदत जिंसी और वहदत नौई और वहदत सिन्फी में कोई मुनाफात नहीं है। कहते हैं वला मुनाफात बैनहुमा, और जिंस और वहदत में कोई मुनाफात नहीं है। लिजवाज इत्तिसाफिल जिंस बिल वहदति वल वाहिद बिल जिंसियति, इसलिए क्योंकि जायज है यानी मुमकिन है इत्तिसाफिल जिंस, जिंस का मुत्तसिफ होना बिल वहदति वहदत के साथ, जिंस वहदत के साथ मुत्तसिफ हो सकती है। वल वाहिदी बिल जिंसियति, और वाहिद जिंसियत के साथ मुत्तसिफ हो सकता है, वाहिद जिंस वहदत से मुत्तसिफ हो सकती है और वाहिद जिंसियत के साथ मुत्तसिफ हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया जैद अमर बकर, ये यूं कहें गाय बैल बकरी इंसान, ये अफराद तो कसीर हैं लेकिन ये सब मुत्तसिफ हैं वहदत के साथ कि इन सब की जिंस क्या है, एक ही है। तो ये जिंस है, जिंस के अफराद हैं लेकिन ये वहदत के साथ मुत्तसिफ हो रहे हैं कि इनकी जिंस एक ही है। लिजवाज इत्तिसाफिल जिंस बिल वहदति वल वाहिद बिल जिंसियति, इसलिए क्योंकि जायज है कि जिंस मुत्तसिफ हो जाए वहदत के साथ और वाहिद मुत्तसिफ हो जाए जिंसियत के साथ। युकालू, कहा जाता है हादल जिंसु वाहिदुन, ये जिंस एक है। वदालिकल वाहिदु जिंसुन, और वो एक जिंस है। तवज्जो है, हादल जिंसु वाहिदुन, तवज्जो से तरकीब सुनो। हाजा ये है मुबतदा मरफू महलन मौसूफ, मैंने आपको बताया था मारिफा के बाद मारिफा है तो वो अमूमन क्या बनते हैं एक दूसरे, वो मौसूफ सिफत, तो हाजा हुआ मौसूफ, ये मारिफा है। और अल जिंसु ये भी क्या है, मारिफा, तो ये उसकी सिफत। तो हाजा मरफू महलन मौसूफ, मरफू क्यों, मुबतदा है, और महलन क्यों, क्योंकि मबनी है इसमें इशारा है, और मौसूफ अल जिंसु मरफू लफजान सिफत, मरफू क्यों, क्योंकि यह सिफत है और मौसूफ सिफत का इराब एक होता है, हाजा मरफू था तो यह सिफत भी मरफू, तो मरफू लफजन सिफत मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा और वाहिदुन उसकी खबर। तर्जमा क्या होगा, ये जिंस, हाजल जिंस का क्या तर्जमा, ये जिंस वाहिद एक है। तो देखा ये जिंस, इस जिंस पर हुक्म लगा दिया किस चीज का, वाहिद होने का, गोया जिंस मुत्तसिफ हो गई वाहिद के होने के साथ यानी वहदत के साथ, ये जिंस एक है। मालूम हुआ आपने जिंस को किस वसफ के साथ मुत्तसिफ कर दिया, वहदत के साथ। और अगले जुमले में आइए, वदालिकल वाहिदु जिंसुन, जालिका मरफू महल्लान मौसूफ, ये उसी तरह हाजा की तरह है, हाजा इसमें इशारा है करीब के लिए और जालिका है बाईद के लिए। जालिका मरफू महल्लान मौसूफ, मरफू क्यों मुबतदा है, महल्लान क्यों मबनी है इसमें इशारा है, मौसूफ आपको कैसे पता चला मौसूफ है क्योंकि इसके बाद एक और मारिफा आ रहा है। और आगे अलवाहिदो मरफू लफजान सिफत, मरफू क्यों क्योंकि ये सिफत है, सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर आता है, मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा और जिन सुन ये इसकी खबर। जालिकल वाहिदु वो एक ये है मुबतदा, जिन सुन वो जिन्स है ये खबर आ गई, वो एक जिन्स है, वो वाली एक चीज जो है वो जिन्स है। तो देखा वाहिद एक मुतायन वाहिद पर जिन्स होने का हुक्म लगा दिया, यानी वहदत को मुत्तसिफ कर दिया किसके साथ, जिन्सियत के साथ, कि वो एक क्या है जिन्स है। बात समझ में आ रही है। यहां हमल के बारे में समझ लो भाई, देखो ये जो खबर होती है इसका हमल होता है मुबतदा पर, हादल जिन्सु है मुबतदा और वाहिदुन है उसकी खबर, और खबर का हमल होता है मुबतदा पर, खबर का हमल होता है, यानी यूं कहो खबर का हुक्म लगाया जाता है मुबतदा पर। जैदुन आलिमुन, क्या माना मैंने जैद पर क्या हुक्म लगाया, आलिम होने का, तो ये इसको हमल कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कहो हुक्म कहते हैं। जैदुन आलिमुन, मैंने जैद पर क्या हुक्म लगाया, आलिम होने का, यूं कहो मैंने जैद पर हमल किया किसका, आलिम का हमल किया। तो यहां पर भी इसी तरह है, देखो हादल जिन्सु, हाजल जिन्सु यह है मुबतदा और इस पर हुक्म लगा दिया, इस पर हमल कर दिया किसका, वाहिदुन का, यानी यह जिन्स एक है, वजालिकल वाहिदु जिन्सुन, और वो वाहिद जो है जिन्स है, तो यहां पर वाहिद पर जिन्स होने का हुक्म लगा दिया गया। भाई हमल की तारीफ लिख लीजिए भाई, हमल की तारीफ यह आपको काम आएगी। अलहमलु हामीम लाम, अलहमलु हुआ इत्तेहाद, अल मुतगायरैनी, ज़हनन, दाल है, हा है, नून और अलिफ, जाल हा नून अलिफ, नून के ऊपर तनवीन डाल दें, ज़हनन, फी अल खारिज, लिख लिया, दोबारा सुन लें, अलहम्लु हुवा इत्तेहादुल मुतगायरैनी ज़हनन फिल खारिज, तर्जमा भी लिख लीजिए, दो ऐसी चीजें जो जहन में अलग अलग थीं, जो जहन में अलग अलग थीं, उनका खारिज में मिल जाना, उनका खारिज में मिल जाना, मुत्तहिद हो जाना हमल कहलाता है। लिख लिया, दो ऐसी चीजें जो जहन में अलग अलग थीं, उनका खारिज में मिल जाना और मुत्तहिद हो जाना हमल कहलाता है। देखो इधर देखिए, इसको समझ लें, हमल किसे कहते हैं भाई, देखो हमल ये इसे कहते हैं कि दो चीजें जो जहन में अलग अलग थीं खारिज में वो मुत्तहिद हो जाएं, मिल जाएं। मसलन जैद का क्या माना, जैद एक आदमी का नाम है, और आलिम का क्या माना, जानने वाला, तो जैद और चीज, आलिम और चीज, जहन में आप समझ रहे हैं जैद और चीज है, एक जात का नाम है, और आलिम का क्या माना है वो भी आप जानते हैं, खारिज में इन दोनों का इत्तेहाद हो जाना। मसलन मैंने क्या कहा, जैदुन आलिमुन, मैंने जैद पर आलिम का हमल कर दिया, जैदुन आलिमुन, क्या तर्जमा, जैद आलिम है, देखो जहन में जैद और था, आलिम और क्या, और मैंने क्या कहा, जैदुन आलिमुन। देखो जो जैद है वही क्या है, आलिम भी है, और जो आलिम है वही क्या है, जैद भी है। एक ही शख्स जैद भी बन गया और वही शख्स क्या है, आलिम भी है। दोनों इकट्ठे, दोनों में इत्तेहाद आ गया या नहीं, वही जात है आलिम की भी और वही जात है जैद की भी, तो दोनों में इत्तेहाद आ गया। तो इसको हमल कहते हैं, ये जो खबर का हमल करते हैं हम किस पर, मुबतदा पर। उसमें हम दरअसल क्या करते हैं, दो जहन में जो अलग अलग चीजें थी खारिज में उनको जोड़ देते हैं, एक ही जात के अंदर ले आते हैं, दो इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं। या मसलन मैं कहता हूं जैद मेहनती है, देखो जैद का माना और, मेहनती होने का माना और, मेहनती बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको किसके साथ जोड़ दिया, जैद के साथ। मालूम हुआ वही जैद की जो जात है वो जैद भी है और वो मेहनती भी है, दोनों चीजें एक ही जात में मुत्तहिद हो गई, मिल गई, इकट्ठी हो गई, इसको क्या कहते हैं, हमल कहते हैं। अब देखो यहां किताब में जो मिसाल आई, हादल जिन्स वाहिदुन, ये जिन्स जो है वाहिदुन, ये एक है। हाजल जिन्स क्या है, मुब्तदा, किताब पे नजर रखें, हादल जिन्स क्या है, मुब्तदा। देखो जिन्स का माना और वाहिद ये क्या है, इसकी खबर, वाहिद का माना और, लेकिन खारिज में दोनों क्या हो गए, मुत्तहिद हो गए, उसी जिन्स पर हमल कर दिया, किसका, वाहिद का, तो वही जिन्स है और वही क्या है, वाहिद भी है। इसी तरह वदालिकल वाहिदु जिन्सुन, जालिकल वाहिद है मुब्तदा और जिन्स क्या है, खबर है, तो जालिकल वाहिद, वाहिद का माना और जिन्स का माना और, लेकिन आपने जालिकल वाहिद पे क्या हुक्म लगा दिया, जिन्स का, यूं कहें आपने जालिकल वाहिद पर किस चीज का हमल कर दिया, जिन्स का। और हमल का क्या माना होता है, दो चीजें जो जहन में अलग थी खारिज में उनमें क्या आ जाए, इत्तेहाद आ जाए। जालिकल वाहिद इसका माना और था और जिन्स का माना और था, लेकिन खारिज में वही वाहिद जो है उसको आपने क्या उस पर हुक्म लगा दिया, जिन्स का। मालूम हुआ वही चीज वाहिद भी है और वही चीज जिन्स भी है, तो दोनों में इत्तेहाद आ गया या नहीं। तो देखा जिन्स के साथ वहदत मिल रही है और वहदत के साथ जिन्स मिल रही है, बात समझ में आ गई। बताना ये चाहते हैं मुल्ला जामी रहिमहुल्ला कि जिन्स और वहदत में मुनाफात नहीं, जिन्स वहदत के साथ मुत्तसिफ हो सकती है और वाहिद जिन्सियत के साथ मुत्तसिफ हो सकता है, जैसे इन जुमलों में है हादल जिन्स वाहिदुन, तो ये जिन्स वहदत के साथ मौसूफ हो रही है। वदालिकल वाहिदु जिन्सुन, इसके अंदर जो वाहिद है वो जिन्सियत के साथ मुत्तसिफ हो रहा है। मालूम हुआ जिन्स और वहदत में मुनाफात नहीं है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वयुम्किनु हमलुहा अलल अहदिल खारिजी बि इरादतिल कलिमतिल मज़कूरति अला अलसिनतिन नुहात। यहां से साहिब जामी बतला रहे हैं कि अल कलीमा में अलिफ्लाम को हमने जिन्सी बनाया, आप अगर चाहें तो इसको अहदे खारिजी पर भी महमूल कर सकते हैं। कि अलिफ्लाम कौन सा मुराद ले लें, अहदे खारिजी। भाई अहदे खारिजी कैसे मुराद ले लें, अहदे खारिजी तो वो होता है जिसके लिए खारिज में किसी मुतायन फर्द या अफराद की तरफ इशारा किया जाता है, और पीछे तो कोई कलीम का लफ्ज नहीं गुजरा कि अल कलीमा के जरिए उसकी तरफ इशारा हो जाए, वो वाला कलीमा, पीछे तो कोई कलीमा ही नहीं गुजरा कि उसकी तरफ इशारा हो जाए और आप यूं कहें कि वो वाला कलीमा, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई आप इसको अहदे खारजी पर भी महमूल कर सकते हैं, और इस सूरत में अल कलीमा के लिए इशारा होगा वो वाला कलीमा जो नहवियों की जुबान पर जारी होता है, वो जो नहवी अपनी बातों में जिक्र करते हैं, तलबा आपस में बैठे हुए बातें करते हैं, जैदुन आलिमुन, जैद भी कलीमा है, आलिमुन भी क्या है, कलीमा है। देखा ये जो नहवी आपस में कलीमा कलीमा का लफ्ज जिक्र करते हैं, तो इस अलिफ्लाम के जरिए उस अल कलीमा की तरफ क्या हो जाएगा, इशारा हो जाएगा, वो वाला कलीमा कौन सा, वो जो नहवियों की जुबान पर जारी होता है, तवज्जो है, तो उसकी तरफ इशारा हो जाएगा। तो इस पर इश्काल होता है, भाई पीछे जिक्र ही कहीं नहीं आया तो फिर कैसे उसकी तरफ इशारा हो जाएगा, तो याद रखो पीछे कलीमा का लफ्ज लफ्जों के एतबार से तो कहीं जिक्र नहीं, लेकिन माना के एतबार से जिक्र हो चुका है, मानवी तौर पर जिक्र हो चुका है। भाई किस तरह जिक्र हो चुका है, वजह यह कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं यह नहव की है, किस चीज की किताब है? अकाफिया जो आप पढ़ते हैं वो नहव की किताब है। जब नहव की किताब है तो वहां मानन नहवियों का भी नहवी भी आ गए, मानन नहवियों का जिक्र भी गोया आ गया। जब आप नहव पढ़ रहे हैं तो इस उलूम को तरतीब किसने दिया, किन्होंने इसको जमा किया? नहवी हजरात ने। तो माना के एतबार से नहवियों का जिक्र भी आ गया, और जब नहवियों का जिक्र आ गया तो उनकी जुबान पर जारी होने वाले कलिमे का भी गोया। तो यूं कहो लफ्जों के एतबार से तो न नहवी का जिक्र है न कलिमा का जिक्र है, लेकिन मानवी एतबार से नहवियों का जिक्र भी आ गया और उनकी जुबान पर जारी होने वाले कलिमा का भी जिक्र आ गया। तो यूं कहेंगे कि यहां पर वो जो माहूद है जिसकी तरफ अलिफ लाम के जरिए इशारा किया जा रहा है वो लफ्जन तो मजकूर नहीं लेकिन मानन क्या है? मजकूर है। लफ्जन तो मुतायन नहीं लेकिन मानन क्या है? वो मुतायन है, माहूद है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह यमकिन हमलुहा, और मुमकिन है कि हमल किया जाए इस लाम का। हमलुहा की जमीर किसको राजे? पीछे जो आया था वल्लाम फी हालिल जिन्सी, ये जो लाम है यानी अलिफ लाम, वह यमकिन हमलुहा और मुमकिन है इस अलिफ लाम को महमूल करना अलल अहदिल खारिजी, ये किस पर? अहदे खारिजी पर। भाई अल्लाम की तरफ हा मुअन्नस की जमीर राजे की, क्योंकि ये जो हरूफ हैं लाम हर्फ है ना, और अलिफ लाम ये भी क्या हुआ? हर्फ। तो ये हरूफ क्या हैं? अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, मुजक्कर भी इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी तरफ वाहिद मुअन्नस की जमीर लौटा दी। कहते हैं वह यमकिन हमलुहा अल अहदिल खारिजी, और ये जो अल कलिमा पर अलिफ लाम आया इसको अहद खारिजी पर महमूल करना भी मुमकिन है बि इरादतिल कलिमतिल मज़कूरति अला अलसिनतिन नुहाती, बाई सूरत कि इरादा किया जाए उस कलिमा का जो जिक्र किया जाता है जो मज़कूर होता है अला अलसिनतिन नुहाती, नहवियों की जुबान पर। अलसीना जमा है लिसान की, जुबान को कहते हैं। नुहात जमा है नहवी की। भाई तो बात तस्वीरिया है, किस तरह? वयुमकिनु हमलुहा अलल अहदिल खारिजी, और इस अलिफ लाम को अहद खारिजी पर महमूल करना भी मुमकिन है बाई सूरत। सूरत क्या है? किस तरह महमूल किया जाएगा? बि इरादतिल कलिमतिल मज़कूरति अला अलसिनतिन नुहाती, बई सूरत के इरादा किया जाए इसके जरिए उस कलिमे का जो जिक्र किया जाता है अला अलसिनतिन नुहाती, नहवी हजरात की जुबानों पर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए बस करें, अब हासिल कलाम फिर सुन लीजिए। हासिल कलाम ये कि अल कलिमा मतन आया था, शारह जामी ने उसकी तहकीक फरमाई। सबसे पहले तो आपको यह बतलाया कि जो कलिमा और कलाम हैं ये मुश्तक हैं कलम से, जिसका माना है जख्मी करना। और फिर आपको बतलाया कि अल कलिमा के अंदर ये जो कलिमुन है इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज उलमा फरमाते हैं ये इसमें जिन्स है और बाज उलमा फरमाते हैं ये जमा है। मैंने आपको इसमें जिन्स और जमा का फर्क समझा दिया। इसमें जिन्स उसे कहते हैं कि एक ही लफ्ज कलील और कसीर सब पर बोला जाता है, उसमें फर्क नहीं आता। जैसे इंसान एक हो तो उसको भी कहेंगे इंसान, हजार हो तो भी क्या कहेंगे? ये इंसान है। जबकि जमा जो है उसके अपना अलग वजन होता है, वहां वो तीन या तीन से ज्यादा पर बोला जाता है, तीन से कम पर नहीं। एक हो तो कहेंगे किताब और ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? किताबें। तो जैसे देखो यहां वाहिद और जमा में फर्क आ रहा है, या अरबी में कह लो एक हो तो कहेंगे किताब और तीन या ज्यादा हो तो कहेंगे कुतुबुन। तो जमा जो है तीन या ज्यादा पर उसका इतलाक होता है, वहां लफ्ज ही बदल जाता है। मुफरत के लिए और लफ्ज होता है, तस्निया के लिए और होता है, और जमा के लिए और होता है, लफ्ज में ही फर्क आ जाता है। जबकि इसमें जिंस ऐसा नहीं। तो उलमा के दो ग्रोह हो, बाज उलमा फरमाते हैं कि यह कलीम जो है ये इसमें जिंस है और ये तमर और तमरतुन की तरह है। तमर और तमरतुन में वाहिद और जिंस के दरमियान फर्क किसके जरिए किया जाता है? ताय मरबूता के जरिए। तमरतुन का माना है एक खजूर, और इस ता को हटा दें तमरुन रह गया तो ये इसमें जिंस है। इसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होगा, एक खजूर हो चाहे एक से ज्यादा हो सब पर बोला जाएगा। लेकिन बिलखसूस आप एक खजूर मुराद लेना चाहते हैं तो फिर आपको गोलता साथ मिलानी पड़ेगी तमरतुन, या जैसे बकर और बकारातुन, बकर ये गाय बैल की जिंस है, बकरातुन कहें तो एक गाय बैल, और बकरुन कहें तो इसमें जिंस है कलील और कसीर, सब पर यह बोला जाएगा। तो चुनांचे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह कलीम जो है यह इसमें जिंस है, कलील और कसीर सब पर इसका इतलाक होता है, और इसमें वहदत के लिए ता साथ जोड़ देते हैं और फिर कलीमतुन कहते हैं, तो यह तमरुन और तमरतुन की तरह हुआ, तो यह इसमें जिंस है, यह जमा नहीं है। और दलील इसकी क्या है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिबु, यहां अल कलीम आया और उसकी सिफत अत तय्यिब आई। अगर यह जमा होता तो जमा की सिफत या तो जमा लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस, लिहाजा अलकलिमुत तय्यिबात होना चाहिए था या अलकलिमुत तय्यिबतु होना चाहिए था, लेकिन इसकी सिफत वाहिद मुजक्कर लाई गई, मालूम हुआ यह जमा नहीं है, यह इसमें जिंस है। जबकि उलमा का दूसरा ग्रोह कहता है कि यह जमा है क्योंकि इसका इतलाक तीन या तीन से ज्यादा पर होता है, कम पर नहीं, मालूम हुआ यह जमा है क्योंकि इसमें जिंस का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है। पहले ग्रोह वाले उसका फिर जवाब देते हैं कि हमने जो दलील जिक्र की थी वो वजह के एतबार से जिक्र की थी, और आप जो जवाब दे रहे हैं वो इस्तेमाल के एतबार से दे रहे हैं, ये इस्तेमाल को आप दलील नहीं बना सकते। हमारा दावा ये है कि असले वजह के एतबार से इसमें जिंस है, बाद में इस्तेमाल में अगरचे सिर्फ जमा के तौर पर इस्तेमाल करने लगे लेकिन इससे यह जमा नहीं बनेगा, है फिर भी क्या इसमें जिंस ही। तो एक होती है वजा के एक लफ्ज को एक माना के लिए मुकरर किया जाए, और एक है उसका इस्तेमाल, जैसे दाबतुन वजा तो हर जानदार चीज के लिए था जो जमीन पर चलने वाली हो, लेकिन बाद में खास हो गया किसके लिए, सवारी वाले और बोझ उठाने वाले जानवर यानी घोड़े गधे खच्चर वगैरह के लिए। तो दूसरे ग्रोह वाले जो कहते हैं यह कलीमुन जमा है, वह जवाब देते हैं पहले ग्रोह को कि आपने दलील में अलकलिमुत तय्यिब आयत को जिक्र किया, तो कहते हैं कि भाई उसमें भी तावील की गई है, अल कलिम से क्या मुराद है, बाजुल कलिम मुराद है, क्या मुराद है, बाजुल कलिम मुराद है, और बाज का लफ्ज तो वाहिद मुजक्कर है, तो उस एतबार से अब तय्यिब सिफत वाहिद मुजक्कर लाई गई। तो इस पर फिर पहले जमात उलमा की वो जवाब में कहते हैं कि बाजियत तो यहां पर कलाम से ही मफहूम हो रही है, क्योंकि अल्लाह के यहां तमाम अच्छे कलिमात नहीं अल्लाह की तरफ चढ़ते बल्कि सिर्फ मकबूल कलिमात जो हैं वो अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, तो बाजियत तो कलाम से ही मफहूम हो रही है, तो उसको मुजाह महजूफ निकालने की क्या जरूरत है भाई। फिर जो उलमा कहते हैं ये जमा है, वो दलील देते हैं कि उलमा ने किताबों में एक जाब्ता जिक्र किया है, वो जमा जिसकी जमा और मुफरद में फर्क किसके जरिए हो, गोल ता के जरिए यानी ताय मरबूता के जरिए, उसकी सिफत मुजक्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं, लिहाजा अगर इस आयत को भी दलील बना लो तो भी आपकी यह दलील नहीं बन सकती, क्योंकि अलकलिम वो जमा है जिसका मुफरद किसके साथ लाया जाता है, गोल ता के साथ, और इसकी सिफत मुजक्कर भी लाना जायज, मुअन्नस लाना भी जायज है। तो उसका जवाब भी पहले ग्रोह वाले देते हैं कि नहीं भाई, यह जाब्ता भी इसमें जींस ही का है, इस जाब्ते में जो जमा का लफ्ज जिक्र हो रहा है उस जमा से क्या मुराद है, इसमें जींस ही मुराद है, जमा मुराद नहीं, क्योंकि जमा हकीकी के अंदर यह जाब्ता जारी नहीं होता, अगर जमा का जाब्ता होता तो आम जमा में भी यह जाब्ता जारी होना चाहिए था कि वहां पर भी सिफत चाहे मुजक्कर ले आए चाहे मुअन्नस ले आए, यह मालूम हुआ यह जाब्ता किसके बारे में है, ये इसमें जिंस के बारे में है। और नीज फिर पहले ग्रोह वाले दलील देते हैं कि कलीम का लफ्ज ये जमा के औजान में से नहीं है, जमा के खास औजान हैं, जैसे कलम की जमा अकलाम, किताब की जमा कुतुब, गुलाम की जमा गिलमान, तो ये जमा के अपने मखसूस औजान हैं, और ये कलीम क्या है, जमा के औजान में से नहीं है, मालूम हुआ ये इसमें जिंस है, जमा नहीं है। और साहिब जामी ने भी इसी की तरफ इशारा किया है कि पहला मजहब या पहला कौर राज्य है, इसीलिए दूसरे को कीला के साथ जिक्र किया। उसके बाद फिर आगे बतलाया कि ये अलकलिमा में जो अलिफ लाम है ये जिंस के लिए है, और ये जो इसके आखिर में ता है ये वहदत के लिए है, और इन जिंस और वहदत में मुनाफात नहीं। मैंने तफसील बयान कर दी कि वहदत का माना है वाहिद होना, और उसके मुकाबिल है कसरत, कसरत का माना कसीर होना, ज्यादा होना, वहदत और कसरत में मुनाफात है, दोनों एक दूसरे की जिद हैं, वहदत का माना वाहिद होना और कसरत का माना कसीर होना, और ये जो जिंस है ये कसरत पर दलालत करती है क्योंकि इसके अफराद कसीर होते हैं, तो अगर अलिफ लाम शुरू में जिंस का बनाया जाए तो आखिर में ता वहदत की आ गई, तो अलिफ लाम किस पर दलालत कर रहा है? कसरत पर। और ता किस पर दलालत कर रही है? वहदत पर। तो ये दोनों में तो मुनाफात है भाई, वहदत और कसरत तो एक दूसरे की जिद हैं। तो उसका भी जवाब जिक्र कर दिया मैंने कि वहदत दो किस्म पर है, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी जिसमें फर्द भी एक ही होता है, जैसे वाहिद फर्दी और वाहिद शख्सी, और वहदत मजाजी इसमें अफराद तो कसीर होते हैं लेकिन उन सब में वहदत होती है, बई लिहाज कि उन सब की जिंस क्या होती है? एक। या उनकी नौ क्या होती है? एक। या उनकी सिंफ क्या होती है? एक। तो लिहाजा गोया वहदत की चार किस्में बन गईं, एक वहदत फर्दी, एक वहदत जिंसी, एक वहदत नौई और एक वहदत सिन्फी। और अलिफ लाम जिंसी की मुनाफात है सिर्फ वहदत फर्दी के साथ मुनाफात है, वहदत जिंसी नौई और सिन्फी के साथ मुनाफात नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ वहदत जिंस के साथ जमा हो सकती है, तो चुनांचे जिंस मौसूफ हो जाती है वहदत के साथ और वाहिद मौसूफ हो जाता है जिन्सियत के साथ। चुनाचे कहते हैं हाजल जिन्स वाहिदुन, देखा हाजल जिन्स पर क्या हमल, क्या हुक्म लगा दिया? वाहिद का, यानी वाहिद का इस पर हमल कर दिया। और हमल किसको कहते हैं? जहन में जो अलग दो जुदा जुदा चीजें हों, खारिज में वो दोनों क्या हो जाएं? मुत्तहिद। मालूम हुआ हादल जिन्स वाहिदुन, यही जिन्स इस पर क्या हुक्म लगाया? वाहिद होने का भी हुक्म लगाया। तो ये जिन्स भी है और वाहिद भी है, इकट्ठे हो गए या नहीं? एक ही चीज जिन्स भी है और वाहिद भी है। या दूसरी सूरत ले लें, वाहिद को मुब्तदा बना लो, जिन्स को खबर बना लो, हाजल वाहिदो या जालिकल वाहिदो जिन्सुन। तो देखो एक चीज है वाहिद और उस पर आपने हुक्म क्या लगा दिया? जिन्स होने का। मालूम हुआ एक ही चीज वाहिद भी है और जिन्स भी है, तो दोनों में इत्तेहाद आ गया, दोनों इकट्ठी हो गई। एक ही चीज जिन्स भी है और वही चीज वाहिद भी है। मालूम हुआ जिन्सियत और वहदत में मुनाफात नहीं, वरना एक ही चीज जिन्स और वाहिद कैसे हो सकते हैं भाई? और नीस फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया कि ये अलिफ लाम जो है इसको अहद खारजी पर भी महमूल किया जा सकता है। पहली सूरत तो क्या थी? ये अलिफ लाम जिंसी है। दूसरी ये कि इस अलिफ लाम, इसको कौन सा अलिफ लाम बना लें? अलिफ लाम अहद खारजी। और अहद खारजी में इसके जरिए इशारा हो जाएगा उस कलिमे की तरफ जो किसकी जुबान पर जारी होता है? नहवी हजरात की जुबान पर जारी होता है। इस पर इश्काल होता है कि यहां तो न पीछे नहवियों का जिक्र है न उस कलिमे का जिक्र है जिसकी तरफ आप अलिफ लाम के जरिए क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। तो उसका जवाब भी मैंने बतला दिया कि भाई ये किताब जो है काफिया, ये नहव की किताब है, और जब आप नहव की किताब पढ़ रहे हैं तो मानवी एतबार से नहवियों का भी जिक्र आ गया और नहवियों की जुबान पर जारी होने वाले कलिमे का भी जिक्र आ गया। तो गोया जो माहूद है वो लफ्जों के एतबार से तो मुतायन नहीं, लेकिन माना के एतबार से क्या हुआ? मुतायन, वो माहूद हुआ। और उसकी तरफ अलिफ लाम के जरिए क्या कर दिया? इशारा कर दिया। तो अल कलिमतु, वो वाला कलिमा कौन सा? वो जो नहवियों की जुबान पर जारी होता है। तफसील अच्छी तरह समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, वल्लाहु आलम बि हकीकतिल कलाम। जी सबक समझ में आ गया? चलिए, कौन सा? अच्छा वो लिख लो जल्दी जल्दी, बस इशारात लिख लो। तानीस, तानीस जैसे जारिबतुन, वहदत जैसे तमरतुन, वहदत जैसे तमरतुन, तज़कीर, तज़कीर जैसे सलासतुन, तज़कीर जैसे सलासतुन, इवज़, इवज़ जैसे ईदतुन, जैसे ईदतुन, ईदतुन, मुबालगा, मुबालगा जैसे अल्लामतुन, नकल, नकल जैसे काफियतुन, मस्दरियत, मस्दरियत, मस्दरियत जैसे जारिबियतुन, जारिबियतुन। सारी पूरी हो गई? सात गिन लिया? तो ये सात किस्में हैं, ता कभी तानीस के लिए जैसे जारिबतुन, कभी वहदत के लिए जैसे तमरतुन, कभी तज़कीर के लिए जैसे सलासतुन, और कभी मुबालगे के लिए जैसे अल्लामतुन, कभी ईवस के लिए जैसे ईदतुन, और कभी मस्दरियत के लिए जैसे जारिबियतुन, जारिबियतुन या फाइलियतुन, और नकल के लिए जैसे काफियतुन। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा वल मराम, अल्लाह आलम हकीकतिल कलाम।